ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाखया चक्षुरोन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतः पदकमलं श्रीगुरोन् वैष्णवांश्च श्रीरूपां साग्रजातां सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनासहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपदान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्णकरुणा सिन्धु दीनबन्धोर्जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधाकान्त नमोऽस्तु ते। तप्त काञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानन्द श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि गौर भक्तवृन्द। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे 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 राम हरे राम
हरे कृष्ण। सभी भक्तों से नम्र निवेदन है कि कृपया करके अपने मोबाइल फोन्स स्विच ऑफ कर दे या उसे साइलेंट मोड पे कर दीजिए।
हरे कृष्ण। सभी भक्तों का स्वागत है इस वर्ष के महाशिवरात्रि अवसर पर। भगवान शिव जी हम साधकों के जीवन में एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं, जिसमें बहुत सी शिक्षाएं हम भगवान शिव जी के वैष्णव चरित्र से सीख सकते हैं। श्रीमद् भागवत में अनेक वैष्णवों के बारे में वर्णन किया गया है। श्रीमद् भागवत केवल भगवान श्री विष्णु और उनके भक्त वैष्णव केवल इन्हीं का वर्णन है, परंतु इन सभी वैष्णवों में से श्रीमद् भागवत कहता है कि जो परमोच्च सर्वोच्च वैष्णव हैं वो हैं भगवान शिव जी। श्लोक में आता है कि जैसे नदियों में गंगा सबसे श्रेष्ठ है, सभी आराध्य देवों में भगवान अच्युत कृष्ण वो सबसे श्रेष्ठ है, सभी ग्रंथों में श्रीमद् भागवत जैसे श्रेष्ठ है, उसी प्रकार से सभी वैष्णवों में भगवान शिव जी सबसे श्रेष्ठ है। वैष्णवानाम यथा शंभु। अब भगवान शिव जी का पद ऐसा है कि वो भगवान श्री विष्णु के भक्त होने के साथ साथ वो भगवान श्री विष्णु के अंश भी हैं, अर्थात एक अचिंत्य भेद और अभेद तत्व का एक प्रदर्शन है कि वो स्वयं महाविष्णु के अंश हैं सदाशिव, और भगवान श्री विष्णु के भक्त के रूप में भी हैं वैष्णव के रूप में। इसलिए ब्रह्म संहिता में ब्रह्मा जी बहुत ही सुंदर तरीके से भगवान श्री विष्णु और भगवान शिव जी इनमें कौन सा भेद है कौन सा अभेद है बहुत ही सरल और व्यावहारिक उदाहरण से उन्होंने समझाया है। क्षीरम यथा दधि विकार विशेष योगात, दूध और दही, दूध और दही के उदाहरण से कि जैसे दूध और दही ये एक भी है और भिन्न भी है। एक कैसे है? क्योंकि बिना दूध के दही नहीं बन सकता। अब इसमें भेद क्या है कि दूध से दही बन सकता है परंतु दही से दूध में परिणित नहीं हो सकता है वो। तो ये उदाहरण ब्रह्मा जी देते हैं कि भगवान शिव जी और भगवान श्री कृष्ण इनमें ये अंतर है और इनमें ये समानता है। तो भगवान कृष्ण दूध हुए या दही हुए? दूध हुए। और भगवान शिव जी वो दही हुए। अब दोनों की विशेषताएं हैं, हम यदि अपने व्यावहारिक जीवन में देखें तो यदि हमें खीर खानी है तो क्या दही से खीर बनेगी? नहीं। और यदि हमें लस्सी पीनी है तो चाहे हम दूध को कितना भी फेंटे वो लस्सी बनेगी? नहीं। तो उसी प्रकार से हमारे जीवन में जैसे कि दूध और दही ये दोनों महत्व रखते हैं, उसी प्रकार से भगवान शिवजी और भगवान श्री कृष्ण इन दोनों का महत्व हमें ठीक प्रकार से समझना चाहिए। अक्सर हम इस भ्रांत धारणा में चले जाते हैं कि दोनों में कोई अंतर नहीं। जैसे कि इतिहास में ये कथा है कि तिरुपति बालाजी बहुत ही प्रसिद्ध भगवान का विग्रह है। कौन से भगवान का? भगवान विष्णु का। कितने लोग गए हैं तिरुपति बालाजी के दर्शन किए हैं? केवल इतने ही? तिरुपति बालाजी तो इतने प्रसिद्ध हैं कि देश विदेश से लोग आते हैं दर्शन करने के लिए, बहुत कारणों के वजह से। तो हम सब अब ये जानते हैं कि तिरुपति बालाजी ये स्वयं भगवान श्री विष्णु हैं, श्री कृष्ण बाल गोपाल भी कहा गया है। परंतु श्रीपाद रामानुजाचार्य इनके समय की बात है कि एक राजा हुए उस समय के, उस प्रांत के तोंडवन नाम के राजा थे वो, और बहुत पराक्रमी, और भगवान श्री बालाजी के, तिरुपति बालाजी के वो अनन्य भक्त। तो एक युद्ध में उन्हें कठिनाई हो रही थी, तो तिरुपति बालाजी स्वयं भगवान श्री विष्णु, उन्होंने अपने आयुध सुदर्शन चक्र और गदा, ये अपने आयुध इस राजा को दे दिए इनके संरक्षण के लिए। अब भगवान के विग्रह पर ये आयुध नहीं थे, जो कि श्री विष्णु के चिन्ह हैं, शंख चक्र गदा पद्म। तो अब जो शिव भक्त थे वो कहने लगे कि ये तो शिव जी हैं, क्योंकि उनके बड़े बड़े केश थे, तो कहे शिव जी के बड़े बड़े केश होते हैं, और विष्णु के कोई चिन्ह नहीं है, चारों चिन्ह अब नहीं है, तो फिर ये शिव जी हैं, शिव जी का अर्च विग्रह है। तो अब वैष्णवों में और जो शिव भक्त हैं उनमें वाद विवाद हो गया कि ये हैं कौन, भगवान शिव जी हैं या विष्णु हैं, दूध है या दही है। तो वाद विवाद हो रहा था, तो रामानुजाचार्य उस समय वहां पर उपस्थित हुए, और रामानुजाचार्य इन्होंने कहा कि बहुत सरल है ये जानना, हम ऐसा करते हैं कि शिवजी के जो चिन्ह हैं क्या है, डमरू और त्रिशूल, तो डमरू और त्रिशूल शिवजी के चिन्ह, और भगवान विष्णु के चिन्ह गदा शंख चक्र, और केवल शंख और गदा, ये हम दो विष्णु के चिन्ह और शिवजी के दो चिन्ह ये ऑल्टर में रखते हैं रात को गर्भगृह में, और सुबह भगवान स्वयं निर्णय ले लेंगे। यदि शिवजी होंगे तो अपने आयुध उठाएंगे, यदि भगवान विष्णु होंगे तो अपने उठाएंगे। तो फिर इसी प्रकार से ये योजना की गई, व्यवस्था की गई, डमरू और त्रिशूल एक कोने में और गदा और शंख एक कोने में। स्वयं रामानुजाचार्य ने अपनी तरफ से अर्पित किए थे गदा और शंख। तो रात भर अब शिव भक्त ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय शिवजी से प्रार्थना कर रहे हैं, और भगवान श्री विष्णु के भक्त वो ओम नमो नारायणाय, वो भगवान श्री नारायण विष्णु से प्रार्थना कर रहे हैं कि आप अपने आयुध उठाना, गलती से शिवजी के मत उठा लेना, और शिव भक्त वो प्रार्थना कर रहे हैं कि आप गलती से उनके मत उठा लेना, दोनों वो पूर्ण निष्ठा में कि ये हमारे आराध्य देव हैं। तो सुबह जब ऑल्टर खुला तो क्या हुआ, अर्च विग्रह ने कौन से आयुध धारण किए, नहीं पता, कोई भी नहीं गदा और शंख, और फिर रामानुजाचार्य आकर सबको दिखा दिए कि देखो भगवान ने स्वयं सिद्ध कर दिया कि वो स्वयं विष्णु हैं। अब यहां पर हमें यह समझना चाहिए कि भगवान शिवजी और भगवान विष्णु, इनमें ऐसा नहीं कि उन्होंने उनके आयुध नहीं उठाए तो अब उनका कोई अंश नहीं, अब शिवजी की आराधना बंद नहीं, ऐसा नहीं है। यदि हम ठीक से समझें कि दोनों का पद क्या है, और दोनों के पद को समझते हुए जब हम उनकी आराधना करते हैं, तब भगवान श्री कृष्ण भी प्रसन्न होते हैं और भगवान शिव जी भी प्रसन्न होते हैं। तो इसलिए आज हम चर्चा करेंगे भगवान हरि एवं भगवान हर का घनिष्ठ प्रेम। हरिहर ये भगवान का एक विग्रह है। नवद्वीप धाम में भगवान श्री कृष्ण और भगवान शिव जी ये एक ही विग्रह में, यहां पर तो विवाद चल रहा था कि कौन से विग्रह है, नवद्वीप में एक विग्रह है हरिहर, हरिहर क्षेत्र भी, तो वहां पर भगवान श्री हरि और हर, हर हर महादेव, जो महादेव जी हैं उनको इस नाम से भी पुकारा जाता है। तो ये दोनों एक ही विग्रह में हैं। अब इतना घनिष्ठ प्रेम इन दोनों में है, हम देखेंगे कैसे है, क्यों है। जब तक हम इन दोनों का घनिष्ठ प्रेम नहीं समझेंगे तब तक इन दोनों का आदर नहीं करेंगे ठीक प्रकार से। हम केवल अपना ही ढोल पीटते रहते हैं, कई कहते हैं कि शिवजी ये हैं वो हैं, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान हैं, और फिर भगवान श्री कृष्ण के विषय में तो कहा गया है, तो फिर वाद विवाद और पता नहीं क्या क्या नहीं होता इसको लेकर। परंतु यदि हम इन दोनों के घनिष्ठ प्रेम को देखें तो समझ में आएगा कि इनसे पूछा जाए तो ये हमें ठीक से समझाएंगे कि हम दोनों की आराधना कैसे होनी चाहिए। इसलिए आज के इस महाशिवरात्रि के पर्व पर हमें शिवजी के जो आराध्य देव हैं भगवान श्री कृष्ण, और यहां भी भगवान श्री कृष्ण शिवजी को अपना आराध्य देव मानते हैं, ये दोनों एक दूसरे को अपना आराध्य देव मानते हैं, ये दोनों एक दृष्टिकोण से एक दूसरे के भक्त हैं, और हमें उसी प्रकार से इन दोनों को समझना है, और आज विशेष रूप से भगवान शिव जी को। तो सबसे पहले हम भगवान शिव जी की व्यक्तिगत साधना को यदि देखें, और किसी से नहीं पूछते हुए स्वयं भगवान शिव जी की व्यक्तिगत साधना यदि हम देखें तो उसमें पता लग सकता है कि वो अपनी साधना में किसे साध्य बनाए हैं। जैसे कि कोई व्यक्ति को क्या पसंद है, हम अपनी मनोधारणा से कल्पना करते रहेंगे कि शायद इसे देखकर लगता है कि इसे हरा रंग पसंद होगा। यदि हम किसी को देखें और देखने से क्या हम कल्पना लगा लेंगे कि उसे कौन सा रंग पसंद है, उसे कौन से खाने की वस्तु पसंद है। सबसे सरल क्या है, उस व्यक्ति से पूछ लें, या यदि पूछे भी नहीं परंतु यदि उस व्यक्ति की हम आदतें देखें उसके साथ रहकर, या जो व्यक्ति उसके साथ रहे हैं जो बता रहे हैं उस व्यक्ति की आदतें, तो उससे समझ में आएगा कि ये व्यक्ति को क्या पसंद है क्या ना पसंद है। तो यहां पर स्वयं भगवान शिव जी की व्यक्तिगत साधना को यदि हम देखें तो उनका ध्यान कहां लगा रहता है। श्री कृष्ण ध्यान में हर समय वो ध्यानस्थ रहते हैं, समाधस्थ रहते हैं। जब भगवान शिव जी के हम चित्र को देखते हैं, उनके विग्रह को देखते हैं, तो हर समय भगवान शिव जी शांत ध्यान की मुद्रा में रहते हैं, है कि नहीं। तो अब ये प्रश्न पूछा जाए कि किसका ध्यान करते रहते हैं। हर समय भगवान श्री कृष्ण का लीला ध्यान उनके मन में चलता रहता है, और उनके लीला ध्यान के विषय में बताया गया है कि जब भगवान श्री कृष्ण अवतीर्ण हुए और भगवान श्री कृष्ण उन्होंने कंस द्वारा भेजे गए विविध राक्षसों का उद्धार किया, पूतना, तृणावर्त, अघासुर, ये अघासुर नामक जो असुर था सर्प के रूप में आया, और इसका पूरा परिवार, पुतना, उसकी बहन और एक और भाई बकासुर, तो ये पूरा परिवार कंस द्वारा प्रेरित भगवान श्री कृष्ण को मारने के लिए श्री गोकुल धाम में ये लोग गए, और भगवान ने पुतना का तो विशेष उद्धार किया और अघासुर का भी विशेष उद्धार किया। तो अघासुर एक बहुत विशेष असुर था, क्योंकि ये केवल श्री कृष्ण और वृंदावन वासियों में ही दहशत नहीं फैलाने आया था, परंतु इससे पहले इसने देवताओं के देवलोक में दहशत फैला दी थी। और इसलिए इस असुर को मारने के लिए सारे देवता विशेष प्रार्थना करते थे भगवान श्री कृष्ण के प्रति, क्योंकि सबसे ज्यादा वो इस अघासुर से डरा करते थे ये देवी देवता। इसलिए जब अघासुर सर्प के रूप में भगवान श्री कृष्ण और उनके ग्वाल सखाओं के सामने अपना मुंह चौड़ा कर खड़ा हो गया, तो अब सारे देवी देवता वो अपने लोकों से, भागवत में वर्णन है कि बादलों से छिप छिप कर देख रहे थे इस मैच को, कि अब ये छोटा सा जो ग्वाल बाल है, हम सबको बताया गया है कि ये पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है, ये कन्हैया, ये कृष्ण। तो कईयों में थोड़ा संशय था कि क्या ये इस अघासुर को, इतना बड़ा ये सर्प, क्या इसको मार पाएगा ये छोटा सा बालक, और इसके हाथ में तो केवल एक बांसुरी है, और उससे पहले ये जो सारे सखा, इन्होंने जब अघासुर को देखा तो ये ताली मारते हुए नाचते कूदते फांदते अंदर चले गए। तो अब सारे देवी देवता ही तो ये लोग अंदर चले गए, तो भगवान श्री कृष्ण जब अंदर गए तो ये लोग अब और छिप छिप के देख रहे थे। छिप इसलिए रहे थे कि अघासुर ना देख ले इनको, क्योंकि अघासुर का वर्णन ऐसा था कि उसके नीचे का जबड़ा तो जमीन पर टिका हुआ था, और जो ऊपर का जबड़ा था वो आकाश में बादलों को टच कर रहा था जहां पर ये लोग छिप छिपे थे। तो उसकी जो आंखें थी वो बादलों से निकट थी अघासुर की। तो ये लोग इसलिए डर रहे थे कि हम लोग छिप के मन ही मन इस इच्छा से देख रहे हैं कि कृष्ण मार दे इसे। लेकिन किंतु परंतु कृष्ण किसी कारणवश नहीं मार सके, और अघासुर ने हमें देख लिया तो फिर अघासुर हमें छोड़ेगा नहीं, कि तुम लोग देखने आए थे कि मैं कैसे मरूं, अब आओ थोड़ा दिखाता हूं तुम्हें। तो वो लोग डर डर के छिप छिप कर बादलों के पीछे से देख रहे थे। अब हम सब ये कथा सुने हैं कि भगवान श्री कृष्ण ने अघासुर का उद्धार किया, भगवान बड़े होने लगे अघासुर के मुख में, अघासुर ने अपना मुख बंद कर लिया, भगवान अंदर ग्वाल सखाओं के साथ, और भगवान ने फिर अपना शरीर इतना बढ़ाया कि पूरे मुख में, अघासुर के पूरे मुख में भगवान समा गए। अब हम भी भगवान को अपने मुख में लेते हैं प्रसाद के रूप में। सोचिए भगवान श्री कृष्ण और उनका प्रसाद भी अभिन्न है, और यहां पर अघासुर साक्षात पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को अंदर लिए है। उसने तो महाप्रसादे भी नहीं गाया था, बिना महाप्रसादे गाए भगवान अंदर पहुंच गए, और भगवान फिर इतना ज्यादा फैल गए अघासुर के मुख में कि अघासुर के मस्तिष्क से भगवान बाहर निकले, फाड़कर उसके मस्तिष्क को फाड़कर भगवान बाहर निकले, और उसी प्रकार से अघासुर का उद्धार हुआ, और अघासुर का जो आत्मा वो भगवान के विग्रह में लीन हुआ। अब देखिए ये सब देवी देवता देख रहे हैं, और सारे देवी देवता अब इतना प्रसन्न हुए कि जैसे ही वो अपने सारे जो वाद्य कीर्तन करने के, अलग अलग करताल, शंख, ढोल, मंजीरा, सब कुछ वो, और बहुत सारे अन्य वाद्य भी होते हैं, ये सारे वाद्य वो सब इकट्ठा किए हुए तैयार थे कि जैसे ही अघासुर का वध होता है तो हम भगवान श्री कृष्ण का जयकार करते हुए कीर्तन और नृत्य करेंगे। तो ये लोग सब वहां पर पहुंचे और ये समाचार मिला भगवान श्री शिव जी को कि शिव जी को यह समाचार मिला कि अघासुर का वध भगवान श्री कृष्ण ने इस तरीके से किया। तो बाकी देवी देवता वो तो प्रसन्न होकर कीर्तन कर रहे थे क्योंकि अघासुर का वध भगवान ने किया, ताकि ये लोग अब इनका पिंड छूटा इस ये असुर की तकलीफों से। परंतु भगवान शिव जी वो वहां पर प्रकट हुए, उन्होंने अपने ध्यान में देखा, क्या देखा कि भगवान श्री कृष्ण ने केवल वध नहीं किया बल्कि उद्धार किया। पांच जो मुक्तियां हैं सालोक्य सारूप्य, उस प्रकार से उनमें से एक मुक्ति सारूप्य मुक्ति अघासुर को मिली। तो भगवान शिवजी ने जब इसका ध्यान किया कि केवल वध नहीं किया है, भगवान शिवजी को तो कोई डर नहीं था इस अघासुर से, परंतु इसका उद्धार किया है, मुक्ति दी है इसे, तो भगवान शिवजी अब नाचना शुरू किए। म्यूजिक तो पहले से चल रहा था, तो भगवान शिवजी अब बाकी भी नृत्य कर रहे थे, किन्नर गंधर्व अप्सराएं ये सभी नृत्य कर रहे थे, परंतु जब महादेव शंभु वहां पहुंच गए, वो नृत्य करना प्रारंभ किए, तो बाकी सब साइड में हो गए। हम भी देखते हैं कई बार कीर्तन में जब कोई बहुत एक्रोबैटिक डांसर बीच में आ जाता है तो बाकी लोग साइड में हो जाते हैं, थोड़ा एक तो थोड़ा देखें कैसे करता है। कई बार हम देखते हैं हमारे यहां पर भी कि कोई ऐसे घूमता है कि फिर बाकी सब लोग महामंत्र भी बोलना भूल जाते हैं, वो भी घूमने लगते हैं। तो यहां पर भगवान शिव जी वो नृत्य प्रारंभ किए इस कीर्तन में, इस कृष्ण कीर्तन में वो नृत्य प्रारंभ किए, और इस प्रकार का नृत्य भगवान शिव जी कर रहे थे कि सारी पृथ्वी हिलने लगी। सोचिए ऐसा नृत्य, सारी पृथ्वी हिलने लगी, सारा ब्रह्मांड हिलने लगा, और ऐसा प्रतीत हुआ कि जिस भूदेवी को भगवान बचाने आए वो भूदेवी अब रसातल की तरफ जा रही है। तो अब जो खड़े हुए देवी देवता थे, भूमि देवी हिलने की वजह से वो भी हिलने लगे, और कवि कर्णपुर वो इस दृष्टांत में बताते हैं कि शिव जी अब इतने ज्यादा ध्यानस्थ हो गए, समाधस्थ हो गए भगवान की कृपा को सोचते हुए कि अघासुर के ऊपर ऐसी कृपा भगवान ने की है कि वो मारने आया एक सर्प के रूप में ये असुर, और वो अकेला नहीं, उसकी बहन का भी उद्धार किया है। ये सब का ध्यान करते हुए भगवान शिव जी नृत्य कर रहे हैं। तो देखिए यहां पर भगवान शिव जी क्या सिखा रहे हैं कि जब हम भगवान के कीर्तन में नृत्य करें तो हमें भगवान का ध्यान होना चाहिए, जैसे भगवान शिव जी ने ध्यान किया इस कीर्तन के नृत्य में, और ऐसा ध्यान होना चाहिए कि हमारे नृत्य से संभव नहीं है कि पृथ्वी हिलने लगे, परंतु भक्तों के हृदय तो हिलने चाहिए। तो अब कवि कर्णपुर कहते हैं कि भगवान शिव जी इस कीर्तन में ऐसा नृत्य कर रहे हैं, और यह नृत्य तांडव नृत्य नहीं था, जो कि प्रसिद्ध भगवान शिव जी का नृत्य है तांडव। वो जो तांडव नृत्य है उसमें भगवान शिव जी प्रलय करने के लिए नृत्य करते हैं, तो वो थोड़ा भयावह नृत्य है, उसमें आगे चलकर प्रलय होता है। परंतु यहां पर आगे कोई प्रलय नहीं होने वाला था, सभी आनंद मग्न अवस्था में भगवान शिव जी को देखते हुए वो भी हिलडोल रहे थे। अब सबके सामने एक बहुत ही आश्चर्यचकित दृश्य उन्होंने देखा। भगवान शिव जी वो अपने शरीर पर क्या क्या धारण करते हैं? लेप किसका करते हैं, कौन सा पाउडर लगाते हैं? पॉन्ड्स। स्मशान भूमि की राख कोई लगाना चाहेगा? हम भी भगवान शिव जी के पद चिन्हों पर वैष्णव बनना चाहते हैं। स्मशान भूमि की राख और अपने गले में वो एक माला पहनते हैं। कैसी माला? झेंडू, गुलाब, इसकी माला नहीं। जो स्मशान भूमि में मृत शरीर जो कि जलाए गए या दफनाए गए, उनकी जो खोपड़ी है, वो जो कंकाल, उसकी माला, जिसे माताएं यहां पर हर रोज माला बनाती हैं अर्चा विग्रह के लिए। कल्पना कीजिए कि एक दिन आप लोगों को माला बनाने के लिए नासिक की स्मशान भूमि से खोपड़ियां ला कर दे, हमारे सचिन प्रभु बैग में भर के। पता नहीं फूल आजकल कौन लाता है? शिव कुमार प्रभु उन्हें। उनके नाम भी देखिए। तो शिव कुमार प्रभु बैग भरकर खोपड़ियां लेकर आए कि आज महाशिवरात्रि है तो आज इसकी माला बनाओ। तो भगवान शिव जी देखिए, अब हो सकता है भगवान शिव जी के लिए माला कौन, शायद मेरे ख्याल से पार्वती देवी बनाती होंगी, ऐसा कहीं वर्णन तो नहीं है, परंतु क्योंकि उनकी अर्धांगिनी पत्नी है। तो भगवान शिव जी के गले में ये जो माला, ये खोपड़ियों की जो माला, ये भी इस प्रकार से हिलने डोलने लगी जैसे भगवान श्री कृष्ण, भगवान शिव जी हिलने डोलने लग रहे थे। अब भगवान शिव जी जो जटाधारी हैं, उनके जटा पर चंद्र है, अर्धचंद्र, और उस अर्धचंद्र में अमृत है। तो भगवान शिव जी जैसे नाच रहे थे तो वो जो अर्धचंद्र, वो अर्धचंद्र भी डोलने लगा, और उस अर्धचंद्र में जो अमृत था वो छलकने लगा। कल्पना कीजिए इस दृश्य को कि आप लोग सब वहां पर मौजूद हैं, देवी देवताओं का भी सर्कल है, आप लोगों का भी सर्कल है, और शिव जी बीच में जटाधारी अर्धचंद्र अपनी जटा पर लिए, उसमें अमृत छलक रहा है, और उनके गले में जो मुंडों की माला है वो यहां वहां घूम रही है। और हो क्या रहा है? कृष्ण कीर्तन, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो जो अमृत छलक रहा था वो उन खोपड़ियों पर गिरा। तो अब ये सारी खोपड़ियां किसी मृत, सारे भूत प्रेतों, अलग अलग जो भी कोई मरे हुए होंगे उन सब की, तो अमृत के संपर्क में जब कोई मृत देह या मृत देह का कोई भी अंश आ जाए तो वो जीवित हो जाता है, जो मृत है वो अमृत हो जाता है या जीवित हो जाता है। तो ये सारे जिनकी भी खोपड़ियां थी उनके ऊपर जब ये अमृत के बूंदे छलकी तो ये सब अपने निज रूप शरीर में आ गए। और ये सब अब सोचिए इन शरीरों की माला शिवजी के गले में, इन सब के शरीर और उनकी माला, और ये सब फिर भगवान शिव जी के सामने प्रकट हुए और ये सब कीर्तन करना शुरू किए, नाचना शुरू किए। तो अब कल्पना कीजिए कि सारे देवी देवता ये बहुत चक्कर है, यही क्या हो रहा है, ये कौन सा अद्भुत जादू हो रहा है। तो ये भगवान शिव जी का ध्यान भगवान श्री कृष्ण के ऊपर, तो उनकी साधना का इस प्रकार से ध्यान है। भजन किसका करते हैं? भगवान श्री कृष्ण का भजन। भक्ति रसामृत सिंधु में बताया गया है कि एक दफा नारद मुनि शिव और पार्वती बैठे हुए थे कैलाश पर्वत पर। तो नारद मुनि वहां पर पहुंचे और नारद मुनि हर समय श्री राधिका रमण नाम है, हर समय उनके मुख पर भगवान श्री राधा कृष्ण का ही नाम। तो भगवान राधा और कृष्ण का नाम कीर्तन वो कर रहे थे और शिव जी नारद मुनि के साथ साथ कीर्तन करना शुरू किए। और जैसे ही कीर्तन करना शुरू किए तो अपनी आंख बंद कर ध्यान भी करने लगे अपने आराध्य देव राधा कृष्ण के ऊपर। और पार्वती ने देखा कि उनके देखते देखते उनके सामने नीलकंठ भगवान शिव जी की जो नीली रेखाएं हैं उनके कंठ पर वो सब चली गई। वो नीली रेखाएं किस लिए हैं? क्योंकि विष है, विष जो उन्होंने विष का पान किया तो वो विष का पान किया तो वो रेखाएं वहां पर हैं, नीली रेखा नीलकंठ होने का। तो भगवान के नाम का अमृत वहां पर वो ले रहे हैं तो वो सारा विष और विष का जो भी संकेत वहां पर था उनके कंठ पर वो सब चला गया। तो पार्वती देवी वो आश्चर्यचकित हो गई, वो डर गई कि मेरे पति के बदले कौन है ये, उन्हें संशय हुआ। तो वो वहां से छोड़कर आगे कहीं पर चली गई, छिप गई। तो भक्ति रसामृत सिंधु में रूप गोस्वामी कहते हैं कि भगवान शिव जी इस प्रकार से निरंतर भगवान श्री कृष्ण का नाम भजन करते रहते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। श्री कृष्ण के लीलाओं का, उनके शास्त्रों का, उनके आदेशों का अध्ययन पद्म पुराण में ये कथा का वर्णन है कि भगवान शिव जी गीता का अध्ययन कर रहे थे। तो पार्वती देवी आई और उन्होंने शिव जी से पूछा कि महादेव जी क्या पढ़ रहे हो? तो पूरा उन्होंने वर्णन किया कि ये भगवद गीता है और भगवद गीता का जो गुणगान है वो शिव जी ने अपने मुख से फिर पार्वती देवी को सुनाया। गीता महात्म्य में इसकी कथा है। और फिर पार्वती देवी वो भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं का श्रवण करना चाहती थी। तब भगवान शिव जी ने पार्वती देवी को पूरा श्रीमद् भागवतम सुनाया। और इसकी भी लंबी कथा है कि पार्वती देवी वो भी एक प्रकार के भाव विभोर अवस्था में चली गई थी जब वो श्रीमद् भागवत का श्रवण कर रही थी। और शिवजी तो वो तो खैर आंख बंद कर सुना रहे थे भागवत, और बीच बीच में पार्वती देवी वो शिवजी को दिखाने के लिए कि मैं सुन रही हूं, इस प्रकार से वो कह रही थी। परंतु हमने भी देखा है कि कई बार जब हम भी भागवत का श्रवण करते हैं तो आंखें थोड़ी थोड़ी बंद होती हैं कुछ समय बाद, और कई बार हम भी पार्वती देवी के जैसे आंखें बंद हैं और हाँ हम ऐसे ऐसे हूं करते रहे कि मैं सुन रहा हूं, बंद मत करो। तो उस समय जो सुखदेव गोस्वामी शुक के रूप में, उन्होंने देखा कि पार्वती देवी सो रही हैं, तो यदि शिवजी ये जान लें कि पार्वती देवी सो गई तो बंद कर देंगे सुनाना, तो वो हूं हूं करने लगे ताकि कथा जारी रहे। और इस प्रकार से फिर सुखदेव गोस्वामी ने स्वयं भगवान शिवजी के मुख से भी शुक के रूप में श्रीमद् भागवत की कथा सुनी और उन्होंने फिर आगे चलकर परीक्षित महाराज को सुनाई। तो ये उनकी साधना का अध्ययन भगवद गीता और श्रीमद् भागवत। तो यदि हम भगवान शिव जी से ये सीखें आज के दिन कि हमारा भजन क्या होना चाहिए, ध्यान क्या होना चाहिए, अध्ययन क्या होना चाहिए श्री कृष्ण के संदर्भ में, प्रसाद सेवन, ऐसा नहीं कि भगवान शिव जी जो कि भूत प्रेतों के साथ रहते हैं और कई लोग शिवरात्रि के अवसर पर शिवजी के नाम पर बहुत कुछ अन्य वस्तुएं लेते हैं जो कि प्रसाद की कैटेगरी में नहीं आती, तो इसकी भी कथा है कि उद्धव जी वो एक बार नारद मुनि के साथ संवाद कर रहे थे और उद्धव जी ने नारद मुनि से कहा कि नारद तुमने कभी भगवान नारायण का महाप्रसाद उनकी प्लेट से खाया है? तो नारद मुनि उन्होंने कहा कि ऐसा अवसर तो कभी मिला नहीं। तो उद्धव जी गुणगान करने लगे क्योंकि उद्धव जी उनको तो वो तो भगवान श्री कृष्ण के साथ उठते बैठते सोते खाते, तो भगवान श्री कृष्ण का महाप्रसाद तो रोज ऐसे ही मिलता। सोचिए भगवान श्री कृष्ण की प्लेट से उनके साथ बैठकर खाते हुए, उनकी प्लेट से कई बार भगवान श्री कृष्ण अपनी प्लेट से देते, उद्धव ये खाकर देखो बहुत अच्छा है। तो उद्धव जी नारद मुनि को एक प्रकार से थोड़ा चिढ़ा रहे थे, अरे क्या तुम भगवान के भक्त महाप्रसाद ही नहीं खाए कभी। तो नारद मुनि को लगा, चैलेंज लिया उन्होंने, खा के बताऊंगा अब मैं। तो गए वैकुंठ लोक और वहां पर जो पूरे महा भगवान नारायण के महाप्रसाद की इंचार्ज हैं लक्ष्मी देवी, सब उनके बंदोबस्त में सब कुछ रहता है। तो वहां पर नारद मुनि लक्ष्मी देवी से मिले, लक्ष्मी देवी नारद मुनि अक्सर नारद मुनि मिलते रहते हैं, वैकुंठ लोक जाते रहते हैं, जैसे कई बार हम सब्जी मार्केट जाते रहते हैं वैसे नारद मुनि चलते फिरते ऐसे वैकुंठ लोक पहुंच जाते हैं। तो नारद मुनि ने जब देखा कि लक्ष्मी देवी ने देखा नारद मुनि आए हैं तो स्वागत किया उनका, और लक्ष्मी देवी जानती थी कि नारद मुनि आते रहते हैं, तो ऐसे हर बार वो नहीं पूछती कि कैसे आना हुआ, होते ना कई लोग उनको ये पूछना जरूरी नहीं रहता कैसे आना हुआ, क्योंकि हम जानते हैं उनका कैसे आना होता है। तो लक्ष्मी देवी पूछी नहीं कैसे आना हुआ, तो नारद मुनि फिर वो पूछे, अब पूछी नहीं कैसे आना हुआ, क्या हुआ नारद जी कैसे आना हुआ? तो नारद जी फिर कहते हैं, आज बहुत तीव्र इच्छा है भगवान श्री नारायण का महाप्रसाद यदि मुझे मिले। और नारद मुनि ठीक, उन्हें पता था लंच टाइम कब होता है भगवान श्री नारायण का, तो उसके पश्चात वहां पर पहुंचे। तो लक्ष्मी देवी फिर नारद मुनि को कुछ उत्तर नहीं दी, क्योंकि भगवान नारायण ने लक्ष्मी देवी को यह विशेष आदेश दिया था कि मेरे प्लेट का जो महाप्रसाद है केवल तुम्हारे लिए, और कहीं नहीं बाहर जाना चाहिए। तो अब लक्ष्मी देवी वो थोड़ा डर गई कि नारद मुनि मांग रहे हैं, नारद मुनि को मना कैसे मैं कर सकती हूं और दे भी कैसे सकती हूं। तो लक्ष्मी देवी कुछ कही नहीं, तो नारद मुनि फिर से दोहराए, आप सुने मुझे वो महाप्रसाद चाहिए। तो लक्ष्मी देवी, हाँ महाप्रसाद। तो फिर लक्ष्मी देवी ने नारद मुनि से कहा कि इतनी आसानी से तो मैं नहीं दे सकती, आप ऐसा कीजिए कि आप कुछ जप तप कीजिए, कुछ आपकी तपस्या और तीव्र होगी तो शायद भगवान नारायण स्वयं अपने प्लेट से आपको दे दे। तो फिर नारद मुनि उन्होंने जप तप शुरू किया, बहुत कठोर तप शुरू किया और कई अंतराल तक उन्होंने ऐसा तप किया। उसके पश्चात लक्ष्मी देवी वो इतना ज्यादा प्रसन्न हुई और लक्ष्मी देवी थोड़ा तरस भी खा रही थी, अरे इतना तप कर रहे हैं थोड़ा सा महाप्रसाद के लिए। तो फिर लक्ष्मी देवी ने रिस्क लिया और थोड़ा सा महाप्रसाद भगवान श्री नारायण के प्लेट से निकालकर नारद मुनि को दिया और नारद मुनि तुरंत उन्होंने उस प्रसाद का सेवन कर लिया, क्योंकि प्रसाद जैसे ही मिले तुरंत उसका सेवन कर लेना चाहिए। ये श्रील प्रभुपाद ने एक बार कहा, श्रील प्रभुपाद के एक शिष्य वो प्रभुपाद के सामने कुछ समस्या लेकर आए, कुछ मैनेजमेंट प्रॉब्लम। तो प्रभुपाद सुन रहे थे और प्रभुपाद के पास एक डब्बे में पेड़े रखे हुए थे, तो प्रभुपाद ने पेड़ा उठाया और वो अपना मैनेजमेंट प्रॉब्लम सुना रहे थे वो भक्त। प्रभुपाद ने पेड़ा उठाया और वो एक पेड़ा खाया। तो अब ये भक्त देखे प्रभुपाद पेड़ा खाए तो थोड़ा इनकी भी इच्छा हुई, प्रभुपाद जान गए कि इनके चेहरे से लग रहा है, थोड़ी जीभा में लाल गिर रही है। तो प्रभुपाद ने दिखाया जी, तो उन्होंने अपना हाथ आगे किया, तुरंत प्रभुपाद ने हाथ में रख दिया। अब ये भक्त अकेले नहीं आए थे, इनके साथ और भी पीछे भक्त प्रतीक्षा में थे कि इनका जब हो जाए फिर वो आगे आए, फिर प्रभुपाद के साथ वो वार्ता करें। अब ये अपनी समस्या हाथ में लिए हुए प्रभुपाद के सामने कैसे खाएं, तो हाथ में वो पेड़े को लिए हुए वो वार्ता कर रहे थे प्रभुपाद से। तो पीछे के जो भक्त थे उन्होंने देखा, तो प्रभुपाद सुन रहे हैं और ये बोल रहे हैं हाथ में पेड़े को लिए, तो इन्होंने पीछे वाले भक्त ने हाथ पीछे से आगे किया, पेड़ा उठाया, डाल। तो अब ये पीछे उनको डांट भी नहीं सके, प्रभुपाद सामने, पेड़ा गया हाथ से। तो प्रभुपाद ने देखा, प्रभुपाद ने कहा, Whenever I give प्रसाद immediately you should eat it, कि जब भी मैं प्रसाद दूं तुरंत उसे खा लिया करो, नहीं तो ये होगा। तो नारद मुनि जैसे ही उन्होंने वो प्रसाद पाया तुरंत उन्होंने खा लिया उसे, और जैसे ही खा लिया तो नारद मुनि फिर वो अपने आप में नहीं रहे, कूदते फांदते नाचते, वीणा यहां और उनकी उनकी जटा खुल गई नारद मुनि की, और वो जोर जोर से हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे, और इतनी जोर जोर से वो गाने लगे कि लक्ष्मी देवी उन्होंने कहा तो बाहर जाके गाओ, इधर उनको पता लग जाएगा तो फिर अब मुझे कभी नहीं मिलेगा फिर। तो फिर नारद मुनि वो तुरंत लक्ष्मी देवी ने थोड़ा गेट से बाहर निकाला, तो वो बाहर अपना नृत्य और कीर्तन जारी रखे और करते 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 वो पहुंचे कैलाश धाम। अब शिवजी ने नारद मुनि को देखा तो नारद मुनि के अंदर अलग ही तेज, ऐसा तेज नारद मुनि के अंदर शिवजी ने कभी नहीं देखा। तो शिवजी रुकाना चाहे नारद मुनि को, नारद मुनि रुक ही नहीं रहे। तो शिवजी ने फिर नारद मुनि का हाथ पकड़ दिया, क्या बात है, आज इस प्रकार का तेज और ऐसे भाव विभोर अवस्था में कैसे? तो नारद मुनि ने शिवजी से, क्या बताऊं महादेव जी, आज तो मेरा जीवन सफल हो गया, मेरा जितना भी जप और तप जो भी मैंने किया उसका साफल्य मुझे आज मिल गया। क्या क्या मिला, क्या? आज नारायण जी के प्लेट से महाप्रसाद, क्या बताऊं, अरे क्या महाप्रसाद था। तो शिव जी वो थोड़ा रूठ गए, गुस्से में कहा, नारद जी आप एक तो महाप्रसाद लिए और उसे अकेले खा लिए और अब यहां पर आकर मुझे बता रहे हो, शर्म नहीं आई? अरे मेरे लिए थोड़ा मेरे बारे में सोचते, मैं भी कोई साधारण नहीं महादेव हूं, गुण अवतार हूं। तो नारद मुनि फिर, अरे वो तो ध्यान में नहीं रहा। तो नारद मुनि फिर कहे, अरे नहीं नहीं नहीं, उनके दो उंगलियों के बीच में महाप्रसाद का एक कण अटका हुआ था। तो नारद मुनि ने वो कण निकाला, ये देखिए, अब यहां पर हम क्या सीख रहे हैं कि यहां पर नारद मुनि को पूरा प्लेट भर कर नहीं मिला था। ऐसा नहीं कि लक्ष्मी देवी प्लेट बनाकर लाई थी नारद मुनि के लिए, और ऐसा नहीं कि जब लक्ष्मी देवी ने इतना सा एक घास दिया उनके हाथ में तो नारद मुनि कहे, इतना सा तो प्लेट वेट बना के दिया होता। और जो भी कुछ उसमें से मिला, ऐसा नहीं कि लक्ष्मी देवी प्लेट लेकर आई और नारद मुनि ने कहा थोड़ा रबड़ी देना और वो पूड़ी और वो पकोड़ा और ये सब थोड़ा, जैसे प्रभुपाद के उनके निजी सेवक श्रुतकीर्ति प्रभु, वो जब प्रभुपाद का महाप्रसाद लेकर तो सभी जैसे भंवरे होते हैं फूल के इर्द गिर्द मंडराते हैं, तो सभी भक्त श्रील प्रभुपाद के महाप्लेट के इर्द गिर्द आ जाते और फिर वो श्रुतकीर्ति प्रभु को कहते, ये वाला देना मुझे, वो मुझे देना, ये मुझे देना, वो मुझे देना, इस प्रकार से सब। तो प्रभुपाद ने एक बार अपने कमरे से देखा ये सब कुछ जो हो रहा था। तो दूसरे दिन प्रभुपाद खाए और जो कुछ बचा था सब्जी और जो भी मिठाई या खीर या रबड़ी या जो भी कुछ, प्रभुपाद ने सब मिला दिया। तो श्रुतकीर्ति प्रभु देख रहे थे, प्रभुपाद पहली बार ऐसा क्यों कर रहे हैं, सब कुछ मिला दिया। सब कुछ मिला के प्रभुपाद ने कहा, अब जाओ ले जाओ। तो वो अब श्रुतकीर्ति प्रभु जान गए प्रभुपाद ने ऐसा क्यों किया। तो अब श्रुतकीर्ति प्रभु सब तैयार थे पहले से बाहर कमरे के बाकी सारे भक्त, तो प्लेट लेकर श्रुतकीर्ति प्रभु आए और सभी ने देखा कि आज पूछा, आज खाया नहीं प्रभुपाद ने? अरे खाया, महाप्रसाद, प्रभुपाद का महाप्रसाद नहीं लेंगे आज, नहीं थोड़ा कण दे दो, कण मात्र काफी होता है ना। तो यहां पर भगवान शिव जी को इतना सा कण मिला तो वो उसमें कृतार्थ अपने आप को मान रहे थे, और इतने से कण को भगवान शिव जी ने फिर अपनी जिह्वा पर रखा और फिर वो ट्रांसफर हो गया, वो एक्सटेसी का फाइल ट्रांसफर हो गया नारद मुनि से भगवान शिव जी। शिव जी अब सोचे, शिव जी जब नृत्य करना शुरू करते हैं, अभी अभी हमने सुना, तो अब भगवान शिव जी वो नृत्य करना प्रारंभ किए, भगवान का कीर्तन, हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम, राम राम हरे हरे। तो अब नारद मुनि और शिव जी ये दोनों भाव विभोर अवस्था में महाप्रसाद का सेवन करने के पश्चात दोनों नृत्य कर रहे हैं, कीर्तन कर रहे हैं। और भगवान शिव जी इस प्रकार का नृत्य कर रहे थे कि जैसे हमने सुना पृथ्वी, सारी पृथ्वी हिलने लगी, और पहले तो कैलाश धाम और पृथ्वी हिलने लगी, और फिर वो पृथ्वी रसातल की तरफ नीचे गिरने जा रही थी। तो भूमि देवी को पता लगा कि अरे भाई ये शिव जी के वजह से ये मैं रसातल में जा रही हूं। तो भूमि देवी दौड़ते हुए पार्वती देवी के पास गई और पार्वती देवी को याचना करते हुए कहा कि आपके पति देव संभालो, क्या हो रहा है उन्हें आज। तो पार्वती देवी भागते हुए गई, देखा कि उनके पति आज अलग ही मूड में हैं, और ऐसा भाव विभोर नृत्य कभी उन्होंने, पार्वती देवी ने ऐसा नृत्य कभी देखा नहीं था। तो पार्वती देवी वो पुकारने लगी अपने पति को, तो कुछ नहीं, कोई भान ही नहीं, कुछ सुनाई नहीं दिया। तो फिर पार्वती देवी कुछ अपशब्द कही, तब सब सुनते हैं ना जब अपशब्द, तो जब अपशब्द उन्होंने कहा तुरंत फिर उनका ध्यान भंग हुआ और शिवजी फिर थोड़ा गुस्सा हुए, लेकिन क्या हुआ। तो पार्वती देवी आपको क्या हुआ। तो शिव जी कहे कि क्यों मेरा ध्यान भंग किया। तो पार्वती देवी पूछती हैं कि ये क्या है, ऐसा तो मैंने कभी आपको नृत्य करते हुए, कीर्तन आप करते हैं रोज, लेकिन ऐसा कीर्तन मैंने कभी सुना नहीं और ऐसा नृत्य कभी देखा नहीं। तो फिर शिव जी ने कहा कि नारद मुनि आज आए थे और नारद मुनि उन्होंने महाप्रसाद भगवान श्री नारायण का मुझे लाकर दिया। अरे क्या महाप्रसाद। और फिर शिव जी सोचे कि जैसे मैं गुस्सा हुआ शायद यहां पर भी वही प्रक्रिया होगी। तो अब पार्वती देवी गुस्से में, बस यही प्रेम है आपका मेरे प्रति, इसलिए शादी की थी। तो अब शिव जी जान गए कि अब तो दुर्गा देवी पार्वती देवी अपने दुर्गा के वेश में। तो फिर पार्वती देवी अब उल्टा सीधा सुनाने लगी, मुझे क्यों नहीं दिया, अकेले अकेले मुझे अर्धांगिनी बोलते हो और केवल आधे अंग को खिलाया। तो अब शिवजी वो क्षमा मांगने लगे कि वो उस समय इतना सा एक कर्ण था, ध्यान में नहीं रहा है। तो पार्वती देवी गुस्से में उन्होंने शिवजी से कहा कि जानते हो मेरा एक नाम कौन सा है, मेरा एक नाम है वैष्णवी, केवल आप ही वैष्णवानाम यथा शंभु नहीं हो, मैं भी वैष्णवी हूं। तो वैष्णव विष्णु के मैं भी भक्त हूं, तो मेरा भी अधिकार है उनके महाप्रसाद के ऊपर, और अब मैं दिखाऊंगी कि विष्णु का महाप्रसाद एक वैष्णवी कैसे खाती है। तो उन्होंने तुरंत भगवान विष्णु पर ध्यान किया, तो तुरंत भगवान विष्णु जान गए कि यहां पर गर्मा गर्मी हो रही है, तो वो मीडिएशन कराने के लिए वहां पहुंच गए। तो वहां पहुंच गए और तुरंत पार्वती देवी आगे कुछ खरी खोटी कुछ सुनाए उससे पहले भगवान विष्णु ने आशीर्वाद दे दिया कि मैं पृथ्वी पर अवतार लूंगा श्री जगन्नाथ स्वामी के रूप में, और जगन्नाथ स्वामी के रूप में आपके पति को तो केवल एक कर्ण मिला, 56 भोग और 56 भोग और उसका प्रसाद दिन रात बांटा जाएगा, और तुम बिमला देवी के रूप में वहां पर उपस्थित रहोगी उसी मंदिर के प्रांगण में, और सबसे पहले जो कुछ मुझे भोग चढ़ा है वो महाप्रसाद सबसे पहले तुम्हें फिर अर्पित होगा। तो अब भी भगवान श्री जगन्नाथ को जो कुछ भोग चढ़ाया जाता है वो फिर बिमला देवी स्वयं पार्वती देवी हैं, उनको फिर वो महाप्रसाद भगवान श्री जगन्नाथ जी का अर्पित किया जाता है। तो पार्वती देवी देखिए उनके अंदर, हम उनको धन्यवाद देना चाहेंगे, भगवान शिव जी को भी देना चाहेंगे और नारद मुनि को भी देना चाहेंगे कि यदि ये सब नहीं होते तो भगवान श्री जगन्नाथ जी का जो 56 भोग का महाप्रसाद कौन कौन खाए हैं, आप लोग खाए हैं कि नहीं? यदि जो नहीं खाए हैं तो फिर जीवन व्यर्थ है, और ये व्यर्थ जीवन खत्म होने से पहले जगन्नाथ जी का महाप्रसाद खा लेना चाहिए। तो ये है भगवान शिव जी के प्रसाद, श्री कृष्ण प्रसाद सेवन की महिमा, और उनकी साधना में उनकी जो सेवा है, श्री कृष्ण की निस्वार्थ सेवा। कैसी निस्वार्थ सेवा? कि भगवान श्री कृष्ण ने शिव जी को कहा कि मैं चाहता हूं कि आप नीचे जाइए पृथ्वी लोक पर, और मैंने जो स्थापित किया है धर्म उसके विरुद्ध प्रचार कीजिए, मायावाद, जो मेरा रूप है उसके विरुद्ध, मेरी जो भक्ति है उसके विरुद्ध प्रचार। अब देखिए कई बार जो भगवान के प्रचारक होते हैं उनके उनका बहुत गुणगान होता है कि अरे ये तो भगवान के प्रचारक हैं, क्या प्रचार करते हैं, कितना प्रचार करते हैं। परंतु यहां पर भगवान शिव जी को देखिए कैसा प्रचार करने के लिए भेजा गया, कि स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने वो प्रचार का नोट्स बना के दिया, और वो नोट्स में क्या क्या बोलना है शिव जी को, जो कि भगवान के अनन्य भक्त हैं, उनको उन्हीं भगवान के विरुद्ध, उनकी भक्ति के विरुद्ध, उनके विग्रह, उनके स्वरूप के विरुद्ध प्रचार करना है, मायावाद, असत शास्त्रम। तो ये इनकी निस्वार्थ सेवा है। और संहार करता और भूतनाथ उनका एक नाम है, ये सारे जो भूत पिशाच हैं कोई देवी देवता इनके निकट भी नहीं जाना चाहता, कौन भूत पिशाच के निकट जाना चाहेगा। तो सोचिए भगवान शिव जी न केवल उस प्रकार की निस्वार्थ सेवा करते हैं, बल्कि ये सारे जो भूत पिशाच हैं इनके मध्य में इनको क्लास देते हैं। सोचिए भूत पिशाच को क्लास देना, हम लोग प्रोग्राम फिक्स करते हैं, अच्छा कॉलेज होना चाहिए, अच्छा अच्छी कंपनी होनी चाहिए, सब ऑडियंस अच्छा होना चाहिए, तब जाकर मजा आता है प्रचार करने। सोचिए यदि कोई प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया जाए, ऑडियंस है भूत पिशाच, नासिक में जितने सारे भूत पिशाच है उनके मध्य में कीर्तन करना है, उनके मध्य में लेक्चर देना, तो शिवजी ये उनके मध्य में जाकर उनका उद्धार करने के लिए, इसलिए उनका एक नाम है भूतनाथ। तो ये और कोई सेवा नहीं ले सकता, केवल भगवान शिव जी, ये उनकी निस्वार्थ सेवा। तो ये इनकी व्यक्तिगत साधना है जिसमें सब कुछ, उनका ध्यान, उनका भजन, उनका अध्ययन, सेवा, सब कुछ भगवान श्री कृष्ण को समर्पित है। अब यदि हम भगवान श्री कृष्ण उनका उदाहरण लें तो उनका शिव जी के प्रति जो प्रेम है वो कैसा है। यहां पर तो हमने शिव जी, उनका भगवान श्री कृष्ण के प्रति प्रेम, और भगवान श्री कृष्ण का शिव प्रेम। सबसे पहले भगवान ने शिव जी को अपना धाम रक्षक नियुक्त किया है। जितने भी भगवान श्री कृष्ण के धाम हैं, चाहे आप नवदीप में जाइए, वृंदावन में जाइए, ब्रज